स्वादो तिरुभाव है श्रील मुकुंद दत्त और श्रील श्रीधर पंडित। पहले मुकुंद दत्त के बारे में आपको सुनाएंगे समाधि पुस्तक से। तो मुकुंद दत्त निमाई पंडित के साथ पढ़ते थे एक ही पाठशाला में, और मुकुंद दत्त बहुत सुंदर गाया करते थे, मधुर आवाज थी उनकी बहुत, और अलग अलग रागों में अपने मधुर स्वरों के द्वारा गाया करते थे और अपने मधुर कीर्तन के लिए पूरे नवद्वीप में जाने जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करते। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उस समय मुकुंद दत्त ने बहुत सुंदर कीर्तन किया था, और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की सेवा में फिर लगे थे मुकुंद दत्त। और एक बार शिवास पंडित के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला की थी तो उस समय सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया था, लेकिन मुकुंद दत्त को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुकुंद दत्त ने कर्म ज्ञान और मायावाद दर्शन का प्रचार प्रसार शुरू किया था, और इस तरह से वो कर्मियों के साथ और इन शुष्क न्याय का जो अध्ययन करते हैं उनके साथ जो है वो समय बिताते थे। इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत उनके ऊपर क्रोधित थे। तो मुकुंद दत्त ने सोचा कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है भक्ति देवी के चरणों में, तो उन्होंने आत्महत्या करने के अलावा करने का भी विचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि उनकी दया उनको कैसे प्राप्त होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको मेरी दया प्राप्त होगी कम से कम 10 करोड़ जन्म के बाद, नहीं 10 लाख जन्म के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु के इस वचन को सुनकर मुकुंद दत्त बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे 10 लाख जन्मों के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए उनकी श्रद्धा को देखकर, और तुरंत ही उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हरे हरे। तो दूसरा यहाँ पर दुर्भाव लिखा गया है खोलावेचर श्रीधर का। खोलावेचर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम पार्षदों में से है, और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाया करते थे, उनके साथ कई हास्यप्रद लीलाएं होती थी, और उनसे क्या लेते थे? केला लेते थे, केले के पत्ते लेते थे, और ये सब उनसे ग्रहण किया करते थे। उनके साथ बड़ा अच्छा उनका साक्ष्य रस का संबंध था। श्रीधर पंडित जो है कुसुमा सब सखा है, ये मधुमंगल का दूसरा नाम है कुसुमा सब। मधुमंगल जो सखा है उनका दूसरा नाम क्या है? कुसुमा सब। तो ये कृष्ण लीला में बहुत निकटतम सखा है श्री कृष्ण के, और श्रीधर पंडित के साथ बहुत अच्छा वाद विवाद होता था उनके साथ। श्रीधर पंडित ये कहते थे कि वो वास्तव में आधा धन जो है गंगा जी की सेवा में लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि गंगा जी भी मेरी सेवा में रहती हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को वरदान देना चाहते थे, लेकिन श्रीधर पंडित कोई वरदान नहीं चाहते थे उनसे। उनको हर तरह का ऐश्वर्य देना चाहते थे, सिद्धियां देना चाहते थे, स्वर्लोक का सुख देना चाहते थे, इंद्र का पद देना चाहते थे, सिद्धियां बहुत सारे ऐश्वर्य देना चाहते थे, लेकिन श्रीधर पंडित ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और बाद में श्रीधर पंडित ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से मेरे पास आए जब भी आप लीला प्रकट करें इस पृथ्वी में, तो इसी तरह आप मेरे पास आए और इसी तरह से आप मुझसे आके ये केले छीने, तो ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार श्रीधर पंडित बहुत निकटतम पार्षदों में से एक माने जाते हैं खोलावेचर श्रीधर। और श्रीधरानंद जहाँ पर हम जाते हैं प्रत्येक वर्ष, वहाँ पे बहुत सुंदर नाटिका भी प्रस्तुत की जाती है। हमारे सन्यासीगण वहाँ पे बहुत सुंदर ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। श्री श्रीधर पंडित के शैल मुकुंद दत्त की। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, स्नान पूर्णिमा आप देख ही रहे, वातावरण स्नान का ही है, केवल जगन्नाथ जी का स्नान ही नहीं हो रहा बल्कि आप भी चाहे भी स्नान कर सकते हैं। जब जगन्नाथ जी का स्नान आप करेंगे तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसका लाभ हमें भी मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम जगन्नाथ जी को कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्तया उपरितम अश्नावे प्रयतात्मना। तो आप कुछ भी भोग लगाते हैं भगवान को, उसके बदले में आपको महाप्रसाद मिलता है। तो इसी तरह से जब हम अभिषेक करते हैं तो बदले में हमें चरणामृत मिलता है। तो स्नान जब जगन्नाथ जी का करेंगे तो हमारा भी स्नान हो जाता है और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे सारे कलवश धुल जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारा मंदिर आप देखने जाएंगे आज तो राधा पाद सारथी मंदिर पूरा धुला हुआ है। वो सारा जो ऊपर गंदगी है कि कई वर्षों से साफ नहीं किया गया या पिछले वर्ष से साफ नहीं हुआ, तो आज इंद्रदेव की कृपा हो गई और वर्षा से क्या हुआ मंदिर पूरा धुल गया है। तो मार्बल सारा चमक रहा है आज। तो जगन्नाथ जी का स्नान तो होगा ही, साथ में पूरे उनके पूरे मंदिर का स्नान हो रहा है और साथ में भक्तों का भी स्नान हो रहा है, सब नहा रहे हैं आज। तो जगन्नाथपुरी में तो 108 घड़ों से अधिक जो है घड़ों से उसमें जल भर के स्नान कराया जाता है जगन्नाथ जी का, पब्लिक बात होता है, सब लोग देखते हैं। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। स्कंद पुराण में स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी बता रहे हैं कि मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकट हुआ। तो आज वास्तव में जगन्नाथ जी का जन्म दिन है, आज क्या है उनका बर्थडे है, आज उनका आविर्भाव हुआ है इस पृथ्वी में, जगन्नाथ जी के दर्शन सब कर पाए हैं आज के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का। और 15,34,00,000 साल पहले ये घटना हुई थी, स्कंद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण पद्म पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य है, स्कंद पुराण में उत्कल खंड है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। आज से 15,34,00,000 साल पहले जगन्नाथ जी की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह स्थापित किया था और साथ में सुदर्शन जी का। तो ये स्कंद पुराण में स्वयंभू मन्वंतर के दूसरे भाग में, दूसरे द्वितीय प्रारंभ जो ब्रह्मा जी का जो आधा उम्र बीत जाता है यानी कि 50 साल बीत जाते हैं तो फिर दूसरा भाग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ब्रह्म व्याहृत पुराण के अनुसार भी ये संकीर्तन आंदोलन लगभग 10,000 वर्षों तक चले, श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया है, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी 10,000 वर्षों तक चले, यानी 10,000 वर्षों के बाद रथ यात्रा नहीं होगी। जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर हो जाएगा शायद कहीं छुप के, लेकिन रथ यात्रा नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये जो कथा है हम जो सुनाने जा रहे हैं उनके आविर्भाव के बारे में, ये स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है सुनने को और दूसरा पद्म पुराण में भी। तो महाराज इंद्रद्युम्न कहां पे रहते थे, अवंतीपुर में रहा करते थे, उज्जैन, जो उज्जैन के नाम से आज जाना जाता है, शांति मुनि मुनि का आश्रम है वहां पर। और कृष्ण बलराम वहां पे गए थे, 64 दिनों में 64 कलाएं उन्होंने सीखी थी। तो अवंतीपुर में रहते थे महाराज इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न के ही अवतार हुए हैं महाराज प्रताप रुद्र गौर लीला में। तो महाराज इंद्रद्युम्न गुंडीचा इनका राज्य था अवंतीपुर में। तो एक समय क्या हुआ, कई तीर्थ यात्री आए उनके राज्य में, भ्रमण करते हुए पहुंचे और वहीं पे उसी महल के आसपास आंगन में ही वो विश्राम कर रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन किया है नील माधव का। जगन्नाथपुरी के दक्षिण दिशा में 100 मील दूरी पे नील माधव का मंदिर है। तो महाराज इंद्रद्युम्न के इस राज्य में ये आए थे तीर्थयात्री और वहां पे आंगन में विश्राम कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे नील माधव की प्रसन्नता, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। तो वहां एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने सुना उन सभी तीर्थ यात्रियों से नील माधव के बारे में, और उसके बाद उसने राजा के मंत्री को आगे बताया कि इस तरह से यह तीर्थ यात्री आए थे और बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया नील माधव का, उनकी सुंदरता का वर्णन किया, उनका गुणगान किया। तो मंत्री ने आगे फिर राजा को बताया, महाराज इंद्र तुमने को बताया, महाराज इंद्र तुमने को बताया, क्योंकि महाराज इंद्र तुमने बड़े व्याकुल थे, उनकी बहुत उत्कट इच्छा थी, लालसा थी कि मैं भगवान का दर्शन कब करवाऊंगा, कब वो दिन आएगा कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। महाराज इंद्र तुमने बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो ये मंत्री ने आके बताया महाराज इंद्र तुमने को कि ऐसे ऐसे यहां पर आए थे तीर्थयात्री, और तीर्थयात्रियों से एक ब्राह्मण ने सुना, और ब्राह्मण ने मुझे आगे बताया नील माधव के बारे में कि नील माधव का दर्शन करने के लिए भी कोई अगर लालायित होता है और कि दर्शन करने का भी कोई इच्छुक होता है, या ये भी विचार करता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूं और फिर भी दर्शन नहीं कर पाता है, तो वो भी चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसे जगन्नाथपुरी का महात्म्य भी यही है, अगर आप इसी उत्कल खंड में पढ़ेंगे जगन्नाथपुरी का भी यही महात्म्य है, कोई अगर जगन्नाथपुरी जाने का विचार भी करता है कि मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करना चाहता हूं, जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहता हूं, तो वो भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो जगन्नाथ जी की महिमा है, जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि पतित से पतित जीव जो है कलयुग के, वो भी जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर महाराज इंद्रदुम्न की बात किया, और फिर कलिकाल के जीव तो बड़े भाग्यशाली हैं, जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात आते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने दर्शन किए, उनके सामने नृत्य किए। ये जगन्नाथ जी बहुत बड़ी कृपा है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से केवल ब्रजवासियों को ही नहीं देख रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कलिकाल के बद जीवों को भी देख रहे हैं, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि कर रहे हैं। इसे कई बार पूछते हैं हमारे भक्त लोग कि क्या कारण है ये पुरानी दिल्ली में ही क्यों रथ यात्रा होती है, ऐसे बेहद स्थान में जहां पे कोई जाना नहीं चाहता है, ऐसा निकृष्ट स्थान है, ऐसे पापी जी वहां पर रहते हैं। यही तो जगन्नाथ जी की कृपा है, यही तो उनकी दया है, जहां कोई नहीं जाना चाहता है ना चो जहां कोई जा सकता है वहां पे जगन्नाथ जी तो स्वयं जाते हैं, और भक्तों को फिर जाना ही पड़ता है संकीर्तन करने। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। कलयुग के वास्तव कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है। तो ये महाराज इंद्र दुम्न की बड़ी इच्छा हुई, जब सुना श्रवण करने मात्र से उनकी इच्छा जागृत हुई, वो भी लालायित हुए, उनके हृदय में भी उत्कट लालसा हुई, लौल्यम जागृत हुआ। कृष्ण भक्ति रस भावितावती क्रियताम युक्तो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य है और वह है लौल्य, यानी कि लोभ, यानी कि रुचि। महाराज इंद्र दुम्न के हृदय में लालसा थी, उत्कट लालसा थी, लौल्य था कि मैं कब नील माधव का दर्शन कर पाऊंगा। इतना सुंदर वर्णन मैंने सुना है नील माधव का, तो उन्होंने कहा कि कहां पे नील माधव के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं, जाओ जाओ तीर्थ यात्रियों से पूछो। लेकिन कहा महाराज क्षमा करिए, वो जा चुके हैं। बोला ठीक है, सभी मंत्रियों को बुलाया जाए, और हमारे जो पुजारी के सुपुत्र हैं ब्राह्मण विद्यापति, उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी सहायता करेंगे। सभी मंत्रियों को बुलाया, विचार विमर्श किया, उन्होंने कहा कि आप सब अलग अलग दिशा में जाएं। कुछ मंत्रियों को कहा कि आप उत्तर दिशा में जाएं, कुछ को कहा उन्होंने कि आप दक्षिण दिशा में जाएं, कुछ को कहा कि आप पश्चिम दिशा में जाएं, कुछ को कहा कि आप पूर्व दिशा में जाएं। विद्यापति जो है पूर्व दिशा में जाने के लिए तैयार हुए। श्री श्री राधिका रमण की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो विद्यापति जो है वो पूर्व दिशा में जाने के लिए तैयार हुए, और इनका ठीक है महाराज मैं प्रयास करूंगा। तो सब लोग निकल पड़े, और लगभग 3 महीने के बाद सभी जो मंत्री थे, यानी कि उनके सैनिक थे या जिनको भी भेजा गया था, वो सब वापस आ गए। विद्यापति लेकिन वापस नहीं आए। महाराज इंद्र दुम्न के लिए बड़े चिंतित हुए कि क्या कारण है कि वापस क्यों नहीं आए विद्यापति। विद्यापति दूर निकल पड़े थे, بھارت بھارت کے باہر سے انڈین اوشن کی طرف یا کہہ سکتے ہیں ایسٹرن جو دشا میں پوروی دشا میں بہت دور نکل پڑے, لگ بھگ 100 میل دور نکل پڑے جگن ناتھ پوری سے دکشن دشا کی اور, اور وہاں پر ایک تھان میں پہنچے. بہت سندر تھان تھا, چاروں طرف ہریالی تھے, وکش تھے بہت سارے اور بہت سارے پھول تھے اور بہت سندر خوشبو آ رہی تھی وہاں سے اس تھان سے. ایسا لگ رہا تھا رجنی گندا, چمپا, مالتی اور بہت سارے سندر پھول وہاں پہ تھے اور بہت سندر واتاورن تھا. وہاں پہ پہنچے ودیاپتی, پہنچے ودیاپتی, جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا, اتنا سندر ستھان ہے, کہاں سے یہ سندر خوشبو آ رہی ہے, یہ ایروما کہاں سے آ رہا ہے, بہت بھبیہ واتاورن ہے. تو انہوں نے وہاں گاؤں والوں سے کہا کہ میں ایک رات یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کو تھوڑا سا آبھاس ہوا یہاں ضرور کوئی بات ہے, یہ ستھان بہت وشیش ہے, میں یہاں پہ رات کو رکنا چاہتا ہوں, یہاں کوئی ویوستھا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پورے گاؤں کے پرمکھ ہیں وشوشو, ہے تو شبر جاتی کے, شبر جاتی کے لوگ بڑے ہی نکرش مانے جاتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سور بھی پالتے ہیں, تو اس لیے ان کو بہت ہائی کلاس نہیں مانا جاتا ہے. تو اس لیے لیکن سور جاتی ہونے کے باوجود بھی بڑے دھارمک پرورتی کے ہیں, بہت سجن پروش ہیں اور سامان روپ سے تیرتھ یاتری جب بھی آتے ہیں یا یاتری جب آتے ہیں تو ان کے گھر پہ ہی رکتے ہیں. آپ ان کے گھر پہ جائیں نشچت روپ سے آپ ان کا وہاں پہ رہنے کا ستھان ملے گا. تو ودیاپتی ان کے گھر پہنچے, گھر میں کوئی نہیں تھا, وشوشو کہیں باہر گئے ہوئے تھے. اور ودیاپتی جب وہاں پہنچے تو ان کی کنیا تھی, ان کی سپتری جن کا نام تھا للیتا. تو للیتا باہر آئی, انہوں نے کہا کہ ہے براہمن دے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتے ہوں, ابھی تو پتا شری ہے نہیں, وہ کہیں باہر گئے ہیں, کیا آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے. تو ودیاپتی نے کہا ٹھیک ہے میں باہر ہی انتظار کرتا ہوں. سائنکال جب ہوا تو وشوشو واپس آ گئے, اور وشوشو جب واپس آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک براہمن باہر کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کھما کریے, مجھ سے بہت بڑا اپرادھ ہوا, آپ کو بہت دیر سے انتظار کرنا پڑ گیا یہاں پہ, آپ آئیے بھیتر آئیے, شاید آپ یاتری ہیں, آپ یہیں پہ رکیے ہمارے ساتھ. تو للتا کو بلایا, دیکھو یہ براہمن ہیں, بہت دور سے آئے ہیں لگتا ہے, آپ ان کی سیوا کرو, ان کے رہنے کی پرساد کی ویوستھا کرو. تو وشوشو نے ساری ویوستھا کر دی ودیاپتی کے لیے اور اس طرح سے وہ ان کے گھر پہ رہنے لگے. کچھ ہی سمے کے بعد بڑا پریم ہو گیا ودیاپتی کو وشوشو کی بیٹی سے, یعنی للتا سے, کیونکہ وہ سیوا کر رہے تھے. سیوا کرنے سے آپ کسی کو بھی باندھ سکتے ہیں, یہ سیوا ایک ایسا استر ہے کہ کسی بھی سیوا کے مادھیم سے کسی کو بھی باندھ سکتے ہیں, یعنی کہ کرشن کو بھی باندھ سکتے ہیں آپ, بھگوان کو بھی باندھنے کا. لیکن ان کی سیوا کیسے ہوتی ہے, پریم میں سیوا ہوتی ہے, پریم میں سیوا کے دوارا ہی آپ جگن ناتھ جی کے رتھ کو کھینچتے ہیں, تبھی جگن ناتھ جی کا رتھ کھینچتا ہے, اس میں پریم کی آوشکتا ہے, زبردستی سے آپ جگن ناتھ جی کے رتھ کو نہیں کھینچ سکتے ہیں. تو سیوا کے مادھیم سے ودیاپتی بہت پرسن ہوئے اور ودیاپتی کا بڑا آکرشن ہوا للیتا سے اور وواہ کرنے کا وچار پرسن. ودیاپتی پہلے سے وواہت تھے, ان کی براہمن پتنی تھی جو ان کو چھوڑ کے آئے تھے پیچھے اونتی پور میں, اور ابھی بھی پھر سے دوبارہ وچار کیا انہوں نے وواہ کرنے کا. تو انہوں نے اپنے پتا سے پوچھا اور بیٹی نے بھی انوروھ کیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی یہی پرسنتا ہے تو ٹھیک ہے میں وواہ کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح سے ودیاپتی نے دوسرا وواہ کیا, للتا سے وواہ کیا. اور کچھ سمے کے بعد ودیاپتی جس ادیش سے آئے تھے اس ادیش کو بھی پورا کرنا تھا. انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے میں یہاں کافی سمے سے رہ رہا ہوں اور اب تو میرا وواہ ہو چکا ہے تم سے, میری اچھا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پتا شری روز کہاں جاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے شریر سے اتنی خوشبو ہوتی ہے ان کے شریر میں, اور اس پورے گاؤں میں ایسا واتاورن ہے, دیویہ واتاورن ہے, بہت سندر ہوا چل رہی ہے, بریز, چاروں طرف خوشبو پھیلا ہوا ہے, رجنی گندھا, مالتی, چمپا اتیادی کئی طرح کے پھولوں کی خوشبو یہاں پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف, بہت سندر واتاورن ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کہاں جاتے ہیں آپ کے پتا, وہ میں نہیں بتا سکتا. میں کیوں نہیں بتا سکتا, میں تمہارا پتی ہوں, تم میری اردھانگنی ہو, یہ تمہیں شوبھا نہیں دیتا کہ تم اپنے پتی سے سب کچھ چھپا رہی ہو. اور کہا نہیں, میرے پتا نے کہا ہے کہ اس رہسیہ کو نہ بتایا جائے. نہیں, یہ تو تمہیں شوبھا نہیں دیتا ہے, اس طرح تم چھپا رہی ہو مجھ سے سب کچھ. تو للتا بھی سوچنا پڑ گئی کہ کیا کروں میں, ایک طرف میرے پتا ہے, دوسرے طرف میرے پتی ہیں, سمسیا میں پڑ گئی ہوں. چلو ٹھیک ہے, اب ان کے کہنے پر میں پوچھ لیتی ہوں پتا سے. پتا سے پوچھا, پتا نے صاف انکار کر دیا. پتا سوچے پڑ گئے, وشوشو سوچے پڑ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ نیل مادھو کا درشن کر لے گا تو پھر اس کو اچھا ہو جائے گی اس کو پراپت کرنے کے لیے, اور یہاں سے پھر کہیں دور چلے جائیں گے. لیکن بیٹی نے اپنا استر کا اپیوگ کیا, اس کو کہتے ہیں استری پاش, ایسے ہوتا ہے نا ورن پاش. تو اس للتا نے کہا کہ دیکھو میں آتم ہتیا کر لوں گی اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے, اگر آپ جو ہے کہ سہایتا نہیں کریں گے, کیونکہ وش ودیاپتی کی کیا اچھا ہے کہ وہ نیل مادھو کا درشن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈر گیا, وہ ڈر گیا, وشوشو ڈر گیا کہ بیٹی جو ہے آتم ہتیا کر لے گی. انہوں نے کہا نہیں 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 تم آتم ہتیا وہاں کرنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو لے کے جاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر کے لے جاؤں گا, آنکھوں کے سامنے کالا پٹا ہوگا اور میں اس کو لے کے جاؤں گا اور کچھ دیکھ نہیں پائے گا, اور بعد میں وہاں جا کے جب نیل مادھو کے سامنے لے کے جاؤں گا تو میں وہ پٹا کھول دوں گا, نیل مادھو کا وہ درشن کر پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ودیاپتی کو یہ وچار بڑا اچھا لگا, اور ودیاپتی نے کہا ٹھیک ہے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن للیتا بھی بہت سمجھدار تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے ان کے ساتھ, لیکن ساتھ میں سرسوں کا بیج لے کے جائیے, برسات کا موسم ہے, ورشا ہو رہی ہے, تو سرسوں کا بیج راستے میں ڈالتے ہوئے جائیے, کچھ ہی سمے کے بعد سرسوں کے پھول نکل آئیں گے. دیکھا آپ نے سرسوں کا پھول, اور ایک لمبی کیاری سی بن جائے گی, اور اسی رستے سے گزرتے ہوئے آپ اگلی بار بڑی آسانی سے پہنچ پائیں گے, پھر آپ کو میرے پتا کے ساتھ جانے کی آوشیکتا نہیں ہوگی. بہت اچھا آئیڈیا ہے, تو سرسوں کا بیج لے لیا, ایک تھیلی میں رکھ لیا, اور پھر وہ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے, چل دیے پیچھے بیٹھ کر, آنکھوں میں پٹا لگا ہوا تھا کالا, اور اس کے بعد پھر ودیاپتی وشوشو کے ساتھ نکل پڑے تھے, اور سارے رستے میں وہ سرسوں کا بیج دھیرے دھیرے پھینکتے جا رہے تھے. سرسوں کا بیج, برسات کا موسم تھا, اور ایک پہاڑی کے پاس پہنچے, بیل گاڑی وہاں رک گئی, اور تھوڑی اونچائی میں گئے جب تو آنکھوں سے وہ کالا پردہ ہٹایا, اور جیسے ہی وہ کالا پردہ ہٹایا تو کیا ہوا, سامنے نیل مادھو, بھگوان نیل مادھو کے درشن پراپت. نیل مادھو شنکھ چکر گدا پد, بہت سندر دکھ رہے تھے نیل مادھو دیکھنے میں. ودیاپتی تو گدگد ہو گئے, دیکھتے رہ گئے, ان کی پلکیں چپک ہی نہیں رہی تھی, لیکن آف کورس رادھیکا رمن جیسے سندر نہیں تھے وہ, چتربھوج روپ تو بہت سندر ہے بھگوان کا, لیکن گوپیاں تو کرشن کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم بھی گوڑیا ویشنو جو بھکت ہیں وہ بھی رادھا کرشن کا وگرہ سوروپ جب تک درشن نہ کر لیں تب تک من پرسن نہیں ہوتا ہے, بات صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ تو پرارمبک اوستھا ہے, جب اس اوستھا میں پہنچیں گے تو پھر آپ سوچ کے دیکھیں. بھگوان بھی تو سوئم بھگوت گیتا میں کہہ رہے ہیں مام ایکم شرنم برج, اور کسی روپ میں مت دھیان لگاؤ, केवल मेरे रूप पर ध्यान लगाऊं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथ जी का दर्शन पहली बार किया तो उन्होंने अपने श्याम सुंदर रूप का दर्शन किया। खैर यहां पर तो विद्यापति की इच्छा थी नील माधव का दर्शन करने के लिए, तो नील माधव चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन प्राप्त हुए उनको विद्यापति को। विश्वेश्वर ने कहा कि अभी मैं कुछ मुझे सामान लेके आना है, फूल लेके आना है, अर्चन के लिए कुछ सामग्री लेके आनी है, आप उस समय के लिए यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं, मैं वापस आऊंगा जल्द। तो वह निकल पड़े विश्वेश्वर और विद्यापति पीछे रह गए। बहुत देर तक नील माधव का दर्शन कर रहे थे, फिर उन्होंने चारों ओर अपना नजर दौड़ाई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक तालाब था और तालाब के पास एक वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा कुछ समय बैठा था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कौवा नीचे गिर गया वृक्ष से, यानी कि उमर गया, उसे शरीर छोड़ दिया, देह त्याग दिया। लेकिन क्या देखा विद्यापति ने, क्या देखा, आत्मा प्रकट हुई चतुर्भुज स्वरूप में और वैकुंठ धाम से गरुड़ जी आए और कौवे को जो अब वैकुंठ का पार्षद बन चुका था गरुड़ जी में बैठकर भगवान के धाम चला गया। कितना आसान है अगर इस तरह से धाम जाना, वृक्ष के ऊपर बैठो और तालाब में गिर जाओ और वैकुंठ धाम चले जाओ। तो विद्यापति ने भी यही विचार किया, उन्होंने कहा कि क्या है राज्य की जिम्मेदारियां और इतना मुझे प्रयास करना पड़ रहा है, अंततः तो यही लक्ष्य है ना कि भगवान के धाम में जाए, तो मैं भी इस वृक्ष के ऊपर चढ़ता हूं और वहां से मैं कूद जाऊंगा यानी आत्महत्या कर लूंगा और मैं भी फिर वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लूंगा। तो जैसे वो आगे बढ़ने लगे विद्यापति तो आकाशवाणी सुनाई दी, विद्यापति ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम, ये क्या वैकुंठ धाम जाने का तरीका है कि तुम सोच रहे हो कि तुम आत्महत्या कर लोगे और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तुम्हें संसार में बहुत कुछ करना है, संसार के लिए बहुत कुछ करना है, कहां जा रहे हो, जाओ वापस। तो इस तरह से जाओ कि नील माधव को, नील माधव के बारे में महाराज इंद्र तुमने कुछ सूचना दो, वापस जाओ, अब तुमने नील माधव के दर्शन कर लिए हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसी के लिए आए थे, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, बाकी सब तो 3 महीने में वापस आ गए, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने से तुम अभी हो, राजा भी चिंता कर रहा है, जाओ वापस जाओ और नील माधव के बारे में बताओ महाराज इंद्र तुमने को। तो उसके बाद फिर उस गांव से जब विश्वेश्वर वापस आ गए इतने में, और विश्वेश्वर ने कहा ठीक है अब सायंकाल का समय हो गया है, पूजा समाप्त हो गई है, आज की सेवा हो गई है, अब हम वापस चलते हैं। तो फिर से काला पट्टा बांध दिया और वापस आने लगे। वापस जब आए तो जब वो घर तक पहुंच ही रहे थे फिर से आकाशवाणी हुई, किसके लिए, विश्वेश्वर के लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं, आपने मेरी बहुत सेवा की है लेकिन अब मैं महाराज इंद्रदम्न की सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। नील माधव कह रहे हैं विश्वेश्वर को, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाना चाहता हूं। तो विश्वेश्वर बहुत घबरा गए, बहुत भयभीत हो गए और बहुत ही चिंता करने लगे कि नील माधव यहां से चले जाएंगे, नहीं नहीं, और ये लड़का जो मेरे साथ आया है ये जाके राजा को बता देगा, तो ये लड़का जाएगा तभी तो बताएगा ना, मैं तो कैद कर लूंगा। विद्यापति को विश्वेश्वर ने अपने घर में कैद कर लिया, कमरे में बंद कर दिया। फिर ललिता जी बहुत चिंतित हुई और वो अपने पति के पास आई, उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो विद्यापति ने कहा कि मुझे यहां से छुड़वाओ, मैं महाराज इंद्रदम्न के पास जाना चाहता हूं, उनको मैं सूचना देना चाहता हूं नील माधव के बारे में, और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी सहायता करो। تو پھر انہوں نے اپنا وہی استر کا اپیوگ کیا. اس نے للتا جی نے پہنچی وہ کس کے پاس؟ اپنے پتا کے پاس, وشوشو کے پاس. تو وشوشو سے کہا کہ اگر آپ ان کو رہا نہیں کریں گے, ان کو جانے نہیں دیں گے, تو میں آپ کو ہتیا کر لوں گی. تو پھر ان کے پتا پھر گھبرا گئے اور انہوں نے ودیاوتی کو رہا کر دیا. ودیاوتی بس گھر سے نکلے اور کچھ ہی سمے کے بعد مہاراج اندردمن کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا مہاراج ایک خوشخبری ہے, مجھے نیل مادھو کے درشن پراپت ہوئے ہیں, اب ہمیں چلنا ہوگا ان کے درشن کرنے کے لیے. مہاراج اندردمن اتنے پرسن ہوئے, انہوں نے کہا اچھا نیل مادھو کے درشن تمہیں پراپت ہوئے, تمہیں پتا ہے کہاں نیل مادھو ہے؟ چلو چلو ہم سب چلیں گے, ہم اپنے سینکوں کو لے چلیں گے, اپنی پرجا کو لے چلیں گے, سبھی کو لے چلیں گے, ہم وہاں جا کر ہم درشن کریں گے نیل مادھو کے, ان کو واپس لے کے آئیں گے اور ان کی یہاں سیوا شروع کریں گے. تو مہاراج اندردمن کا کیا پلان تھا کہ وہ نیل مادھو کو واپس لے کے آنا چاہتے تھے اونتی پور اور ان کی سیوا پرارمبھ کرنا چاہ رہے تھے. تو مہاراج اندردمن نے اپنی سینا کے ساتھ, پریوار کے ساتھ اور ودیاوتی کے ساتھ چل پڑے کہاں, جگن ناتھ پوری کی اور, اور وہاں سے دکشن دشا میں 100 میل کی دوری میں جہاں پہ ایک گاؤں تھا وہاں جب پہنچے, رستے میں دیکھا نہ سرسوں کا کوئی کھیت تھا, کوئی کیاری تھی, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر, بالکل بے حد استھان تھا چاروں طرف. وہاں پر اس گاؤں میں ریتی جو ہے لگ بھگ 100 فٹ اونچی استھان اونچا جو ہے استھان بن چکا تھا, مطلب ہر جگہ ریتی ریتی تھی. وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی گاؤں نہیں تھا وہاں پر, اور وہاں بھگوان نیل مادھو کے درشن بھی نہیں ہوئے. وہ گاؤں ایسا لگ رہا تھا اجڑ گیا ہے, چاروں طرف ریتی ریتی, 100 فٹ اوپر جو ہے سینڈ کے ڈیونز بنے ہوئے تھے. تو پھر مہاراج اندردمن نے بہت دکھی ہوئے, نیل مادھو نیل مادھو نیل مادھو کہاں ہو کہاں ہو, کوتھا گلا, کدھر ہو آپ, سپریشن میں برہ, یعنی کہ ورہ اتکٹ ہوتا جا رہا تھا. ورہ جب آپ کا تیور ہو جاتا ہے کرشن کے لیے تو ملن کی سمبھاونا بھی ہوتی ہے. سپریشن اگر فیل ہو رہا ہے بہت ادھک کرشن سے تو اس کا مطلب آپ جلد ہی کرشن سے ملنے والے ہیں, اور ورہ ہی نہیں ہو رہا ہے